हरि ओम यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमौ यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरतम् स्मरामि प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जय मुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 परमात्मा की प्राप्ति के लिए चार चरण आगे बढ़ाने हैं। पहला चरण है अपने इस जागृत अवस्था के जो जष्टि में है इसको थोड़ा विराट बनाना, मतलब हर समय बस इतना ही अपने मैं को न माने कि यही मैं शरीर, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा। परमात्मा के मैं के साथ यदि एक मिनट के लिए आप अपना मैं जोड़ दें भाव से, तो फिर ये दुनिया किसकी है? सब अपनी तो है। तो यही विराट का भाव है। और एक एक मिनट 24 घंटे में कितनी बार करेंगे? एक बार तो कम से कम हो गए, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है। तो आपका ये संकल्प दृढ़ होता जाएगा कि मैं ये एक मटकोटे वाला शरीर नहीं हूं, शरीर वाला नहीं हूं, मैं तो संपूर्ण सृष्टि में जो व्याप्त चैतन्य है उससे एक हूं। ऐसा मत मानो कि सारी सृष्टि मेरी है, ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन सारी सृष्टि मेरे में ये प्रतीत हो रही है, मैं वो। बोले ये पहला चरण है। अब दूसरा चरण है कि सूक्ष्म सृष्टि माने अपने स्वप्नलोक की दुनिया से बाहर निकले। ये सपना एक तो रात को नींद के कारण आता है, जब आदमी आधा सोता है और आधा जगा हुआ होता है, तब जो भी संस्कार चित्त में, चाहे इस जन्म के हों चाहे पहले जन्मों के हों, जो चित्त में भरा हुआ है ना, वही सब पर्दे पर दिखने लगता है। आत्मा ही पर्दा है और आत्मा ही प्रकाश है। और ऑपरेटर ये जीवात्मा भोक्ता जो है ये ऑपरेटर। तो लीला ये चल रही है, सपना चल रहा है ना रहा है। हमारी दृष्टि से तो ये जागृत सत्य है और स्वप्न झूठा है, क्योंकि हम जागृत को ही महत्व देते हैं। लेकिन जरा परमात्मा की दृष्टि से देखो, परमात्मा ही प्रकाश है और परमात्मा ही अधिष्ठान होने से पर्दा है, और उस पर जो कुछ भी ये दिख रहा है माया की रील से ला रहे हैं वही देख रहा है। तो ये दूसरा चरण है। तो कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि जैसे भगवान को ये सृष्टि दिखती है, ऐसे ही आधे क्षण के लिए ही सही हमारी भी उसकी नजर से नजर मिल जाए। परसों महाराष्ट्र की टेप शाम को चलती है ना, वीडियो टेप, तो भक्ति योग चल रहा है उसमें। तो उसमें एक वाक्य उन्होंने बोला था कि तुम्हारी दृष्टि सच्ची कि परमात्मा की दृष्टि सच्ची। जब तक तुम्हें अपनी दृष्टि सच्ची मालूम पड़ती है तब तक अभी तुम्हारी कमी है, तुम साधक अभी ठीक नहीं हो। परमात्मा को जैसी ये सृष्टि दिखती है, अरे थोड़े टाइम के लिए वैसी भी तो देखो ना। वासुदेव सर्वम, ये तो महात्मा बोलता है, स महात्मा से दुर्लभ। और उपनिषद में कहते हैं अहमई वेदम सर्वम, मैं ही ये सब हूं, ये ईश्वरीय दृष्टि है। और ब्रह्म में तो सर्वम सप्पम सप ब्रह्म में ये कहने की जरूरत नहीं है कि सब मैं ही हूं, क्योंकि सब ही ब्रह्म रूप हो ही गया, तो कहने की कहे कौन, किसको कहे। केन कम पश्येत केन कम विजानियात यत्र आत्मैवाभूत, ये भी वैदारण्यक की श्रुति है कि जहां आत्मा ही सब कुछ है, अब वहां केन कम पश्येत, किसके द्वारा कौन किसको देखे, सारी त्रिपुटियां समाप्त हो जाती है। तो जीव दृष्टि को हटाने के लिए विराट दृष्टि कभी कभी विचार करना चाहिए, ये पहला कदम है। और भोक्तृत्व दृष्टि को हटाने के लिए, जीव दृष्टि में कर्ता की प्रधानता होती है, जागृत अवस्था में कर्ता की प्रधानता होती है और स्वप्न अवस्था में भोक्ता की प्रधानता होती है। दृश्य भी भोक्ता ही प्रस्तुत करता है और भोग भी उनका वो खुद ही करता है। तो हिरण्यगर्भ के विचार से ये भोक्तृत्व क्षीण होता है और विराट के विचार से कर्तृत्व क्षीण होता है। चलो अब एक अवस्था और रह गई तीसरे चरण की, सुषुप्ति की। कल यही बात छोड़ी थी तो मैंने कल कहा था कि आजकल लोग कहते हैं कि सुषुप्ति होती नहीं है, लेकिन उनके कहने से क्या है, सबको अनुभव है। सोते सोते कुछ क्षण तो ऐसा आते ही हैं कि जबकि कुछ पता नहीं रहता है, शरीर न शरीर का, न शरीर के संबंधियों का, न मकान का, न शहर का, कुछ पता नहीं। भले ही चाहे आपको पांच मिनट की सुषुप्ति हो और किसी को आधा घंटे की हो, बहुत ज्यादा लंबी तो किसी की नहीं होती है, ज्यादातर तो सपने लोग ही होता है। लेकिन जितनी देर भी जिसकी होती है सुषुप्ति होती है, सबका ये अनुभव है। तो मनोवैज्ञानिक कुछ भी कहते रहे, वो तो इसको इसलिए बोलते हैं आजकल कि कहीं आत्मा सिद्ध न हो जाए, क्योंकि अगर आत्मा सिद्ध हो गया तो फिर ये सारा वेदांत और सारे हिंदू धर्म जो है ये सब सिद्ध हो जाएगा। मार्क्सवादी हैं वो आत्मा पर ही कुठाराघात करते रहते हैं, बोले आत्मा ही नहीं है, पुनर्जन्म ही नहीं है, जो कुछ है बस यही है। और मार्क्सवादियों को छोड़ दो, अब जनरल लोगों की भी धारणा यही हो रही है, अरे साहब किसने देखा है स्वर्ग नरक, किसने देखा है पुनर्जन्म, ये सब भयावह डराने के लिए प्रलोभन है। अच्छा महात्मा लोग भी ऐसे बोल देते हैं कि प्रलोभन है भाई, ये स्वर्ग का प्रलोभन है, स्वर्ग वर्ग है नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शून्य में आदमी नहीं सोच सकता, भले ही स्वर्ग है कि नहीं है, माने दिखता है कि नहीं दिखता है, वो तो मरने के बाद दिखेगा, तो मर के देखो पहले तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं। तो जीते जी तो वो स्वर्ग दिखने वाला है नहीं, लेकिन जीते जी स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग के सुखों की इच्छा तो होती है, जैसा सुनते हैं कि वहां ऐसा सुख है ऐसा सुख है, वही सब सुख तो हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं। अब घरों में भी पार्क बने हुए हैं ना रहे, बड़े बड़े जो घर हैं बंगले हैं, तो वहां क्या है कि वहां नंदन वन है, वहां अप्सराएं गाती फिरती हैं, यहां पर किराए की मिल जाती है। जिन चीजों की वहां इच्छा होती है ऐसा सुनने में आता है, वही सब चीज यहां भी है। तो ये इच्छा कहां से आई अगर कोई चीज है ही नहीं, तो बोले ये सब मुड़ियों ने संसार रचा है, क्या रखा है मेदे में, ये सब आत्माओं की लीला है, ऐसा बोल देते हैं, कुछ नहीं, नहीं ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। वो तो अगर ये दुनिया है तो वो दुनिया भी है, पहले इसको नकारो तब उसको नकारो, तब तो वो सनातन धर्म है, और उसको नकार दिया और इसमें फंस गए नारायण, तो ये सनातन धर्म नहीं है, ये तो अधर्म की ओर चलने का रास्ता है। तो सुषुप्ति है, धोखे में नहीं आना चाहिए। अब सुषुप्ति क्या किसको कहते हैं, पहले उपनिषद इसी को क्लियर करती है, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। उपनिषद ने न तो पहले जागृत अवस्था की परिभाषा दी न स्वप्न अवस्था की परिभाषा दी, लेकिन सुषुप्ति अवस्था की परिभाषा दी। क्यों? क्योंकि ये तो जागृत और स्वप्न का तो हम सबको अनुभव है, और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो कॉन्शियसनेस बेहोशी हो जाती है, तो है वहां कुछ के नहीं है इसमें संदेह बना रहता है। लेकिन जब सुषुप्ति ये उपनिषद ने ये बात परिभाषा कर दी तो अब ये बात पक्की हो गई कि सुषुप्ति अवस्था भी है, और वो कैसी है कि यत्र सुप्ता, यत्र माने जिसमें, जहां, तो जिसमें माने जिस काल में, और जहां माने कौन सोएगा, हम ही सोएंगे ना, तो हम ही सुषुप्ति में जाएंगे, इस समय हम जागृत में हैं, तो हमारी सिद्धि सुषुप्ति में तो कर ही दी उपनिषद ने, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हम गायब हो जाते हो वहां, अरे फिर कोई सोएगा ही नहीं अगर ये पता चल जाए ना कि सुषुप्ति में हम लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, फिर कोई सोएगा नहीं ना, रहे पता नहीं लौट के आवे या ना आवे। और सुषुप्ति और मृत्यु में फर्क तो सिर्फ इतना ही है ना कि सुषुप्ति से लौट आते हैं और मृत्यु से वो जागृत का अहम जो है लौटता नहीं है। बाकी बेहोशी की स्थिति तो सब वही है। तो यत्र सुप्तो, जिसमें मैं सो करके न कंचन कामं कामयते, कुछ भी किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। तो जागृत अवस्था गई, और न कंचन स्वप्नम पश्यति, और न कोई सपना ही देखता हूं। तो जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं से विलक्षण एक अवस्था में हम चले जाते हैं, उसको ही सुषुप्ति बोलते हैं। अब आपको और कुछ नाम रखना हो तो और नाम रख लो, कोई शास्त्रीय नाम तो उसका सुषुप्ति ही है। आजकल ऐसे बोलते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जब इन शब्दों को सुनते हैं ना, बोले देखो असली तो वेदांत ये है। अरे भाई, इन्हीं को उन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया और क्या किया। कॉन्शियस जागृत हो गई, सब कॉन्शियस स्वप्न हो गया, और जहां पर के कुछ पता नहीं चलता है वो अनकॉन्शियस हो गया। तो कोई बात अंग्रेजी में सुनने से ही महान हो जाती है क्या? तो जिसमें सोया हुआ मनुष्य न तो जागृत का कोई व्यवहार करता है और न स्वप्न के अनुसार कामना करता है, ऐसी जो स्थिति है। अब पश्यति माने ज्ञानात्मा तो वहां मौजूद है, लेकिन जागृत जैसा कुछ अनुभव नहीं होता और स्वप्न जैसा भी कुछ अनुभव नहीं होता। स्थूल शरीर भी काम नहीं करता और सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करता। स्थूल शरीर काम नहीं करता इसलिए कर्म नहीं होते, और सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता इसलिए वासनाएं नहीं होती। बस पड़े। लेकिन क्या वो कृतकृत्यता की स्थिति है? क्या उस सुषुप्ति से उठने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि हम कृतकृत्य हो गए, कर्म छूट गया, हमारी सब वासनाएं छूट गई, तो बस अब तो हम ब्रह्म हो गए नारायण? तो हमारे गणित में एक होता है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। तो ये कर्म त्याग, ये नेसेसरी कंडीशन भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आप चाहे जितना कर्म छोड़ के बैठ जाओ, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और बोले वासनाएं उदय ही ना हो, समाधि में ही बैठे रहो, तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये सब नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन अगर माने भी जाए तो नेसेसरी तो हो सकती है, आवश्यक तो हो सकती है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इनसे ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो उपनिषद विद्या चाहिए और किसी गुरु के द्वारा उसको ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि सब बात किताब में नहीं लिखी होती है। उसका लक्षार्थ तो गुरु ही बताता है कि इस शब्द की मार जो है वो कहां पे है। तो ये सुषुप्ति की परिभाषा हो गई। बोले अच्छा चलो विचार करते हैं सुषुप्ति का। सुषुप्ति स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो हि आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञस्तृतीय पाद। वही जैसे साथ साथ हिस्से करके जागृत और स्वप्न का विचार किया, ऐसे ही सुषुप्ति का भी साथ साथ हिस्सों का विचार करके करते हैं। तो बोले ये आत्मा जीवात्मा जो है ये सुषुप्त स्थान वाला है। सुबह उठकर क्या कहता है, मैं तो सो गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहा। अरे भाई तुम वदतो व्याघात बोल रहे हो, अगर पता ही नहीं रहा तो मैं सो गया था ये कैसे तुम्हें मालूम है। बोले मेरे मुंह में जीभ नहीं है तो बोल कैसे रहे हो, इसको वदतो व्याघात बोलते हैं, बोल भी रहे हो और उसको निषेध भी कर रहे हो कि मेरे मुंह में तो जीभ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं रहा। अरे तो ये तो पता रहा ना, जागृत और स्वप्न का कुछ पता नहीं रहा, ये तो उसकी सुषुप्ति की परिभाषा में ही बोल दिया, लेकिन वहां कोई कॉन्शियसनेस रही ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा। सुषुप्त स्थान है, मैं सो गया, ये अभिमान जगतने पर होता है। सुषुप्त स्थान, मैं इतनी देर समाधि में रहा, समाधि के अभ्यास करने वाले लोग क्या करते हैं, घड़ी में या मोबाइल में अपना वो टाइम लगा देते, मान लो आधा घंटे पौना घंटे घंटे भर जो कुछ भी है। अब वो तो उनके कान तो उस पर लगे रहते हैं कि कब ये मोबाइल बोले और कब हम आसन खोले जा रहे हैं, तो वो कोई समाधि थोड़ी लगती है, वो तो उसी में समाधि रहती है टाइम में। महाराज जी तो कहते हैं कि अगर भजन करने बैठना है, समाधि लगानी है, तो ये सोच के बैठो कि अब दुनिया हमारे लिए खत्म, अब अगर हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। एक आदमी अगर दुनिया से चला भी गया तो क्या दुनिया खाली हो जाएगी? तो सुषुप्त स्थान अर्थात मैं सुषुप्त हो गया था, ऐसा अभिमान वो करता है। एकी भूता, अब वहां का अनुभव बता रहे हैं क्या हो गया था। तो अनुभव सुषुप्ति में तो होता नहीं है कुछ भी, वहां तो ऐसा समझो जैसे काला कम्बल ओढ़ लो तो आपके शरीर का कोई हिस्सा दिखता नहीं है। तो एक काला कम्बल और निद्रा, घोर निद्रा, तो निद्रा को काला ही रंग का माना गया है ना। तो एक ही भूता का अर्थ शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे मान लो दिन में तो सब चीजें दिखाई दे रही हैं, अब आ गई रात, अमावस्या की रात, और उसमें भी बादल आ गए, अब न तारों का प्रकाश है न सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, तो जो चीजें अलग अलग सब दिख रही थी उनका क्या हुआ, दिखना बंद हो गया। तो सब के सब एक भूत हो गए, एक ही भूत हो गए, उस अंधेरे ने सबको एकम एक कर दिया, सारे डिफरेंसेस भेद जो है वो समाप्त हो जाते हैं। एक माने जो अनेक में व्याप्त हो, एति इति एक रहा, ऐसा व्याकरण से इसकी व्युत्पत्ति करते हैं कि जो दूसरों में एति माने चला जाए, जैसे एक और एक होगा तब दो बनेगा ना, एक और एक और एक फिर बनेगा तब तीन बनेगा, तो वो एक ही के तो अलग अलग नाम चलते चले जा रहे हैं। तो एक किसको कहते हैं कि जो अनेक में उपस्थित होता है, व्याप्त होता है। अब मान लो हजार में आपकी गिनती पहुंच गई, तो फिर उसमें एक की तरफ आओगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले 999, 998, ऐसे करते करते वापसी चलो, तब एक पे आओगे ना, तो बोले नहीं, एक साथ भी हो सकता है। कैसे कि घना अंधकार छा जाए, हाथ को हाथ सूझे नहीं, तो सब एकदम लुप्त हो जाए। ऐसे ही जहां नींद आई तो जागृत स्वप्न के सारे भेद जो है वो एक रूप हो जाते हैं। क्या रूप है उनका? अंधेरा। माइंड में तो ये लर्किंग रहती है कि नहीं, यहां फलाना आदमी बैठा था, अब नहीं दिख रहा है। लेकिन अब तो कुछ भी तो नहीं दिख रहा है ना, वही थोड़े नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसी को एक ही भूत बोलते हैं। सुषुप्त स्थान एक ही भूत प्रज्ञान घन, ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। एक तो है ज्ञान, एक है प्रज्ञान। तो जैसे सूर्य है तो सूर्य का स्वरूप क्या है? प्रकाश। लेकिन प्रकाश की जो किरणें हैं उससे उसकी व्याप्ति होती है। अगर उसमें से किरणों को रोक दिया जाए किसी तरह से तो उसकी व्याप्ति नहीं होगी प्रकाश की। तो ये आत्मा जो है ये तो सूर्य की तरह से ज्ञान स्वरूप है। ये माया महारानी ये करती हैं कि इनकी किरणों को फैला देती हैं। इनकी माया को गाली देने की जरूरत नहीं है, ये वैभव है आत्मा का, इसको वैभव बोलते हैं। तो ये उसके प्रकाश को फैला देती है। कितनी किरणें फैल रही हैं? तो सबसे पहले एक किरण चली, उसका नाम हो गया अहंकार। फिर दूसरी अहंकार से आगे चली, उसका नाम हो गया बुद्धि। फिर और आगे चली मन। अब मन में ही घूमने लगे तो कितने भागों में विभक्त हो गए? अनंत। मन के संकल्प विकल्प अनंत। फिर वहां से आगे चले इंद्रियों में आए, पांच प्रमुख हैं। कर्म इंद्रियों में भी आ गए। और क्या आप समझते हो कि ये दसी जगह प्रकाश है? आपके शरीर में ये छेद कितने फोर्स? इनकी शायद वैज्ञानिक तो कहते हैं हमने गिनती कर ली, क्योंकि वो अनंत को मानने को तैयार ही नहीं है। अनंत को मानेंगे तो परमात्मा को मानना पड़ेगा, फिर अपने अज्ञान को मानना पड़ेगा। तो कहते नहीं, सब चीज फाइनाइट है, अनंत कुछ नहीं है। यह आकाश कहां तक है? बोले ये भी फाइनाइट है। दी थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ये निकाल ली उन्होंने। बोले जब तक हम वहां पता लगाने पहुंचेंगे वो और आगे बढ़ जाएगा। अरे तो इसी को तो अनंत बोलते हैं। मगर वो अनंत नहीं कहेंगे। तो एक एक पोर में से ये प्रकाश जो है आत्मा का निकल रहा है। दस इंद्रियों में से मुख्य रूप से है। फिर और आगे चले तो ये जो वायु के कण हैं इनको प्रकाशित करता है। फिर और आगे चले तो जो वस्तु सामने रखी है उसको प्रकाशित करता है। तो इन्हीं सबको बोलते हैं प्रज्ञान। प्रज्ञान माने ज्ञान की किरणें। ये ज्ञान अब सुषुप्ति में क्या होता है? जागृत और स्वप्न में तो ये प्रज्ञान विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। सुषुप्ति में क्या होता है कि प्रज्ञान घन, घन माने ठोस। जयदयाल गोविंदका जी महाराज कहते थे घन सच्चिदानंद घन। मारवाड़ी मिश्रित बोलते थे ना, घन जिसमें सुई की नोक भी ना घुस सके उसको बोलते हैं। वैसे संसार में ऐसा कोई घन नहीं है, क्योंकि आकाश की व्याप्ति सर्वत्र है, और जहां आकाश की व्याप्ति होगी वहां सुई की नोक तो घुस ही जाएगी, साधारण सुई की नहीं घुसेगी, विशेष सुई की घुस जाएगी, लेकिन घुसेगी तो, वरना बिखर नहीं सकती वस्तु। सब वस्तुएं बिखरती हैं, नष्ट होती है, लेकिन परमात्मा जो है वो घन है, उसमें कुछ नहीं घुस सकता। ये माया छाया भी अध्यारोप के अंतर्गत ही सब मानी जाती है। तो सुषुप्ति स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन। अब जागृत के भी कोई किरणें नहीं दिख रही, स्वप्न के भी कोई किरणें नहीं दिख रही, एव आनंदमयो। अब वहां का अनुभव क्या है, क्यों सोना चाहते आप? तो बोले वहां ताजगी आ जाती है, थक जाता है ना मनुष्य। तो यही भाष्यकार लिखते हैं कि थकान काय से होती है, काम करने से नहीं थकता है मनुष्य। ये एक ही वस्तु को दो दो जगह बांटता रहता है, मैं जानने वाला ज्ञाता ये ज्ञेय, मैं करने वाला ये कर्म, मैं भोगने वाला ये भोग। ये जो डिवीजन करने की उसकी बुद्धि की कसरत है, ये कसरत जागृत में भी रहती है और स्वप्न में भी रहती है, तो इससे जो है माइंड थक जाता है। तो उस थकने को मिटाने के लिए जरूरी है कि ये व्यापार बंद किया जाए। तो इसलिए भगवान ने ये सुषुप्ति बना दी कि वैसे तो तुम बंद करोगे नहीं, तो जबरदस्ती बंद करा देते हैं थोड़ी देर। उतनी देर में जो है आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। एक कोई सीरियल था शायद या क्या था, टीवी पे था, पहले देखते थे, अब तो बहुत दिन हो गए देखे हुए। तो उसमें था कि एक आदमी ने आराधना की, उसे बोले क्या चाहते हो? देवता ने कहा, बोले मैं धरती का मालिक होना चाहता हूं। बोले धरती का मालिक तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? तो ऐसा है कि तू सूरज निकलने के टाइम से चल और सूर्य छिपते तक चलता रहे, जितने हिस्से पर चल जाएगा उतने हिस्से का तू मालिक हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। अब वो चल दिया सुबह उठ करके, रात को नींद ही नहीं आई उसे, चल दिया नारायण। अब फिर ये तो चाल तो बहुत धीरी है, अभी तो एक घंटे में इतना ही चल पाया मैं, फिर और चाल तेज की, फिर और चाल तेज की। ज्यादा से ज्यादा जमीन के ऊपर चलना चाहता था ना। अब देखा उसने कि सूर्य तो छिपने पे आ रहा है, एक मिनट को भी सुस्ताया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, चलता ही रहा, चलता ही, वो लोभ के कारण। आखिर में जब उसने देखा कि सूर्य तो अब छिपने वाला है, तो उसने दौड़ लगानी शुरू की। वो दौड़ लगाई तो बस हार्ट फेल हो गया। सारी धरती का मालिक हो गया। तो भगवान ने कहा तू तो मानेगा नहीं, तो इसलिए जबरदस्ती उसने ये सुषुप्ति बना दी। थकान हो सो जाओ। तो वहां जो रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है कि मैं तरोताजा हो गया, तो वहां कुछ सुख होता है क्या? वृत्ति तो है नहीं, मन बुद्धि कुछ काम करते नहीं, इंद्रिय कुछ काम करते नहीं, तो फिर सुख कैसे होता है? तो बोले बिना वृत्ति के जो सुख हो उसको बोलते हैं आनंद। रात हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा जब वृत्ति नहीं होगी तो आनंद का भी अनुभव नहीं हो सकता है। आनंद का अनुभव करना है, यही तो मूल अज्ञान है, जो जिसका स्वरूप है नारायण। तो उस स्वरूप को आप अनुभव क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि आप जानते नहीं हो कि मैं आनंद स्वरूप। सुषुप्ति में सता सौम्य तदा संपन्नम, ये श्रुति है कि सुषुप्ति में आदमी सत से एक हो जाता है। तो जब एक हो गया परमात्मा से तो आनंद रूप तो हो ही गया वो, लेकिन उसे ये ज्ञान तो नहीं होता है कि मैं उस समय आनंद परमात्मा से एक हो गया था, इसलिए आनंद मेरा ही था जो मुझे आनंद व सुख मालूम पड़ रहा था, ऐसा नहीं जानता। वो तो कहता मैं थक गया था इसलिए थकान मिटाने के लिए, वहां कोई लड्डू खाने का सुख थोड़ी है, वृत्ति नहीं है वहां, तो किस विषय से वो सुख लेगा? तो फिर जगता है तो फिर थकता है फिर सो जाता है, फिर थकता है फिर सो जाता है। अगर ये अनुभव हो जाए कि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है तो वो जागृत में भी ज्यादा काम नहीं करेगा। काम करना कोई ये तो मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं है। शाह बन करके कोई नहीं रहना चाहता, मजदूर बन करके ही सब रहना चाहते। गीता जी का वो श्लोक बार बार बोल देते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणै। कोई भी आदमी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, प्रकृति उसको जबरदस्ती कर्म में लगा देती है। और 18वें अध्याय में भी एक श्लोक है, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। जो देहधारी है, देहव्रत है, जो देहधारी है वो कर्म का त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए जो कर्म के फल का त्याग करता है उसको ही त्यागी बोलते हैं। ये 18वें अध्याय का। अब इसमें शंकर भाष्य तो लोग पढ़ते ही नहीं है, कुछ अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, कुछ यथार्थ गीता पढ़ लेते हैं। यथार्थ गीता देखिए ना, इनके इस्कॉन वालों की। तो शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि अगर प्रकृति जबरदस्ती सबसे कर्म करा लेती है तो ये नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित, इस श्लोक को कहां ले जाओगे? जो तत्वज्ञानी है वो तो ये स्वीकार ही नहीं करता है कि मैं आत्मा ब्रह्म कुछ करता हूं, जो सर्वव्यापक है वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, यहां ये अर्थ करना चाहिए कि जो तत्वज्ञानी नहीं है उसको प्रकृति जबरदस्ती कर्म में लगा देती है, क्योंकि वो तो अपने को कर्ता ही मानता है। और नहीं देहभ्रता शक्यम, इस श्लोक में जो देहभ्रत का अर्थ देहधारी किया है वो भी ठीक नहीं है। देहभ्रत का अर्थ है देहाभिमानी। अब ये शंकर भाष्य नारायण, अब आपकी जैसी इच्छा हो। आत्मा के बारे में यदि विचार करना हो तो शंकर भाष्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और काम चलूंगा तो कुछ भी मान लो। तो प्रज्ञान घन एवो आनंदमयो, इस सुषुप्ति अवस्था में आनंद नहीं आनंदमयता रहती है। अब आप लोग तो सब वेदांत सुनते पढ़ते रहते हैं तो एक आनंदमय कोश भी होता है ना, और वहां ये लिखा हुआ है साफ कि आनंदमय कोश जो है वो सुषुप्ति में उसका अनुभव होता है। तो यहां आनंदमय का अर्थ लोग कहते हैं करते हैं आनंदमय कोश वाला, तो गलत तो वो भी नहीं है क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा है। लेकिन भाष्यकार ने जो यहां अर्थ किया है वो किया है आनंदमय का, आनंद आनंद प्राय। जैसे 24 घंटे में मान लो कोई 23 घंटे आनंद में रहे तो कहते हैं ये तो 24 घंटे आनंद में ही रहते, अरे वो एक घंटा क्या हुआ, अरे बोलो उसको छोड़ो 23 घंटे के मुकाबले वो एक कुछ नहीं है, आनंद प्राय। तो वहां आनंद के मयट प्रत्यय जो है वो प्राचुर्यार्थक है, माने आनंद की प्रधानता रहती है। आनंद आत्मा का है ये तो ज्ञान वहां होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है, इसीलिए वेदांत का ये पक्का घोष है कि समाधि में तत्व ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि समाधि और सुषुप्ति इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि सुषुप्ति तमोगुण की अवस्था से आती है और समाधि सत्वगुण की अवस्था से आती है, और जो स्वरूपानंद है वो तो स्वरूप का ठीक ठीक बोध होने पर होता है। जैसा हमने मान रखा है कि ये सुख का भोगता है, ये सुख का भोगता नहीं है, सुख स्वरूप है, तो भोगतापन इसमें से किसी तरह से निकल जाए तो आनंद ही आनंद है। सुख स्वरूप रघुवंश मन सभा काल बसतोर, विभीषण ने कहा ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ये भगवान राम के लिए वशिष्ठ जी बोल रहे हैं नामकरण करते हुए, अरे कि जो आनंद सिंधु आनंद का समुद्र है और सुख का ढेर है, अब दोनों में शब्द अंतर कर दिया, तो आनंद सिंधु तो ये निर्गुण ब्रह्म हो गया और सुख की राशि ये सगुण ब्रह्म हो गया ना। राशि माने तो ढेर होता है, तो कितना भी बड़ा ढेर हो होगा तो सीमित ही, और सिंधु को जो है वो अनंत ही मानते हैं। सी करते त्रैलोक सुख, उसकी एक बूंद से सारा संसार तृप्त हो रहा है, तो उसका अनुभव कराने के लिए भगवान ने यह सुषुप्ति दी है कि देखो यहां तुम्हें जागृत अवस्था का भी कोई सुख नहीं है, स्वप्न अवस्था का भी सुख नहीं है, लेकिन सुख में तो रहते हो। अब भाष्यकार लिखते हैं कि आत्मा का आनंद नहीं है क्योंकि ये आत्यंतिक नहीं है, सिर्फ सुषुप्ति में अनुभव होता है, जब सुषुप्ति टूट जाती है तो फिर वही जागृत में रोना धोना सब दुख की बातें आ जाती है। अच्छा जी, अब वहां उस आनंद का भोग करने वाला कौन है सुषुप्ति में, अरे जो सो रहा है वही भोग करने वाला है, तो बोले भोग करने की तो सामग्री उसके पास है ही नहीं, वहां वृत्ति नहीं है तो कैसे भोग करता है। तो अब ये जरा सूक्ष्म विचार है, जैसे हम ये पुस्तक देख रहे हैं, क्या बिना आंख के देख सकते हैं, माने किसी भी ज्ञान इंद्रिय के बिना, अंधे छू के मालूम कर लेते हैं कि भाई ये फिर भी वहां शब्द की तो जरूरत पड़ती है, छू के यही तो देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज है, फिर कोई कहेगा कि ये किताब है तो तो उसको वो समझ जाएगा कि ऐसे ऐसे स्पर्श का नाम किताब है, कोरिलेट कर लेते हैं शब्द के साथ उसको। लेकिन समझने के लिए बिना आंख के रूप नहीं देख सकते, बिना कान के शब्द नहीं सुन सकते, बिना जीभ के रस नहीं दे सकते, बिना त्वचा के स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, और बिना नाक के गंध का स्पर्श नहीं और अनुभव नहीं कर सकते। तो ये बिना ज्ञान इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी का ज्ञान नहीं होता है। इसको बोलते हैं वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान तो जागृत में ये वृत्ति ज्ञान रहता है। अच्छा, सपने में तो ये सब आंख भी बंद हो जाती हैं, सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, रजाई ओढ़ कर लोग तो मुंह ढक के भी सोते हैं तो त्वक इंद्रिय भी आपकी समाप्त हो गई। ज्यादातर यही खुली रहती है त्वक इंद्रिय, तो ये भी मान लो रजाई ओढ़ कर मुंह ढक के सो गए तो ये भी गया, बाकी सारी इंद्रियां तो अपने आप ही बंद हो जाती हैं। फिर वहां स्वप्न के भोग आप किस वृत्ति से करते हो? तो इंद्रिय वृत्ति से जागृत अवस्था में भोग होता है, और अंतःकरण की वृत्ति से स्वप्न अवस्था में भोग होता है। दो वृत्तियां हो गई, इंद्रिय वृत्ति और अंतःकरण की वृत्ति। अब सुषुप्ति में दोनों ही नहीं है, न इंद्रिय वृत्ति है न अंतःकरण की वृत्ति है। तो इसको वेदांत में प्रक्रिया ग्रंथों में अविद्या वृत्ति बोलते हैं। अविद्या वृत्ति का मतलब है कि वस्तु का अनुभव तो हो रहा है लेकिन वहां अनुभविता और अनुभाव्य माने अनुभव करने वाला और जिस चीज का अनुभव हो रहा है उनका भेद वहां है नहीं, क्योंकि वृत्ति नहीं है। फिर भी सुबह उठकर पट्टा ये नहीं कहता है कि मैं आत्मस्वरूप हो गया था, फिर वहां भी भेद की कल्पना कर लेता, अरे वो तो मैं थक गया था इसलिए ज्यादा अच्छी नींद आई। थकने के कारण आपका जो अंतःकरण था वो जागृत हो गया, आपकी इंद्रियां जो थी वो अंतःकरण में लीन हो गई। अब वहां आत्मा ही आत्मा शेष था लेकिन आप मानते नहीं हैं इसको, तो कुछ ना कुछ लगा लेते हो इस वजह से हमको अनुभव, ये अविद्या वृत्ति कहलाती है। अच्छा, ईश्वर को देखा है क्या आपने? शास्त्र शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर को मानते हैं, अनुमान से उसकी सिद्धि करते हैं, शब्द प्रमाण के द्वारा माने शास्त्र के द्वारा उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं और हूं और वो और है ये कैसे आप स्वीकार करते हो? बोले ये भी शब्द प्रमाण के द्वारा स्वीकार करते हैं। तो शब्द में तो भेद का भी वर्णन है और अभेद का भी वर्णन है, तो अभेद को क्यों नहीं स्वीकार करते? बोले वो हमको सूट नहीं करता तो सूट करने वाली बात थोड़ी है भाई, जब आप सत्य का विचार करोगे तो जैसी है वस्तु। इसीलिए कहते हैं कि आपको उपासना करनी हो तो ईश्वर में और अपने में भेद मान करके जो चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन यदि आपको सत्य का साक्षात्कार करना है तो अंत में यही आपको अनुभव होगा कि एक तत्व के अलावा संसार में और कुछ नहीं है। जीव और ब्रह्म ये सिर्फ दो नाम हैं, वस्तु एक है। अच्छा देखो, शब्द की महिमा बताता हूं। ये तो जीव शब्द तो चलो शास्त्रीय है, आत्मा समझ लो, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं आत्मा हूं कहते ही आप शरीर में घुस गए, मैंने शरीर में कोई आत्मा नाम की चीज है वो मैं हूं। और मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म कहते ही आप शरीर से बाहर निकल गए ना। ब्रह्म माने जो सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर माने जो सबका नियंता है, जो सबका कारण है। ये शब्दों की महिमा है। तो जब हम एकत्व का विचार करेंगे तो इनके जो रूढ़ अर्थ हैं प्रचलित, उनको नंबर दो पे रखेंगे, और जो शास्त्रीय अर्थ हैं एकता के बोधक, उनको नंबर एक पर रखकर विचार करते हैं। तो बोले बस झट से अनुभव हो जाता है। अनुभव में देर नहीं है, क्योंकि वस्तु एक ही है। ये दुराग्रह जो है अपने मन के, ये नहीं छूटते। तो ये आनंद का भोग होता है वहां, अविद्या वृत्ति से। मैंने बात तो इतनी समझानी थी, आनंद भोग, आनंद का भोगता है। इसीलिए कहते हैं कि यहां आत्मा तो है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन अज्ञान से लिपटा हुआ है, अविद्या वृत्ति के द्वारा आनंद का भोग करता। चेतो मुखः, इसका मुख जो है माने भोग का जो साधन है वो क्या है कि चेत, चित्त। चित्त चेता, शुद्ध चेत चैतन्य नहीं, जो चैतन्य है, जिस चैतन्य, जो जिस रूप से ये चैतन्य शरीर में अंतःकरण में सब में व्याप्त है, वो है चेतस चित्त। उसके बीच रह जाता है। अगर आप ये नहीं मानोगे कि सुषुप्ति में सबका बीज रह जाता है, तो स्वामी महेशानंद जी महाराज कहते हैं कि पहले अपनी अर्थी बनवा लो क्योंकि सुषुप्ति में गए तो फिर लौटोगे नहीं। ना, ना, ना। राम राम सत्य हो जाए। लेकिन ये प्रारब्ध जो है, इसके कारण सारे बीज इसमें सुरक्षित रहते हैं। 100 बरस की उम्र लेके आए हो तो 100 बरस तक सब सुरक्षित रहेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोई डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता है। बचा सकता होता तो अपने को ही बचा लेता वो। इसका नाम प्राज्ञ है। ये तृतीय पाद है, शेष चर्चा फिर। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।